नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में सुपर मेडिकल हब विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों का एकीकृत संस्थान बनाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने वर्ष 2025 में यात्रियों की संख्या के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार वर्ष 2025 में दिल्ली मेट्रो में कुल 235 करोड़ 80 लाख यात्रियों ने सफर किया। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बूढ़पुर स्थित अपना घर आश्रम के 12वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुई। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज कनॉट प्लेस में आयोजित फिट इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में सुपर मेडिकल हब विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों का एकीकृत संस्थान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एकीकृत करने तथा उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की तर्ज पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजधानी में उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए मरीजों को अधिक सुव्यवस्थित और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एकीकृत व्यवस्था के तहत डॉक्टरों, विशेषज्ञों, चिकित्सा उपकरणों और बुनियादी ढांचे का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा। इसके अलावा सरकार ने भविष्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइटेड साइंसेज को निमहंस 2 के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के मॉडल पर आधारित होगा। बैठक में अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों और मरीजों के दबाव की स्थिति की भी समीक्षा की गई। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बूढ़पुर स्थित अपना घर आश्रम के 12वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पिछले 26 वर्षों से यह संस्थान बेसहारा, निराश्रित और अस्वस्थ लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायी कार्य है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में इस आश्रम के 70 से अधिक केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित हो रहे हैं और विदेशों में भी इसकी सेवाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। दिल्ली मेट्रो ने वर्ष 2025 में यात्रियों की संख्या के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार वर्ष 2025 में दिल्ली मेट्रो में कुल 235 करोड़ 80 लाख यात्रियों ने सफर किया। ये उपलब्धि दिल्ली मेट्रो को देश के शहरी जन परिवहन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में और मजबूत बनाती है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बन गई है और तेजी से विकसित हो रहे शहरी मेट्रो रेल तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश भर में इस समय 26 शहरों में 1143 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो नेटवर्क संचालित है और रोजाना करीब 1,15,00,000 यात्री यात्राएं कर रहे हैं। इनमें से 55% से अधिक यात्राएं अकेले दिल्ली मेट्रो के जरिए की जाती हैं। कोविड महामारी के दौरान आई गिरावट के बाद मेट्रो में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2024 में लगभग 223 करोड़ 50 लाख यात्री यात्राएं दर्ज की गई थी, जो 2025 में बढ़कर 235 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गईं। दिल्ली मेट्रो देश के सबसे बड़े ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क का संचालन करती है। पिंक और मैजेंटा लाइनों पर फिलहाल 80 ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली एनसीआर में शहरी आवागमन की जीवन रेखा बनकर उभरी है। इससे न केवल यात्रा का समय कम हुआ है, बल्कि सड़क जाम में भी कमी आई है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिला है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी यादव।
दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में रेलवे ट्रैक के आसपास जमा कचरे को हटाने के लिए विशेष सफाई अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली में लगभग 123 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के आसपास करीब 15,000 मीट्रिक टन कचरा जमा है, जिसमें से अब तक लगभग 5,000 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका है। नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने बताया कि रेलवे ट्रैक की लंबाई और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुराने कचरे को हटाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित सफाई की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। नगर निगम ने इस अभियान के तहत 145 वाहनों को तैनात किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने शहर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए नई वितरण नीति जारी की है। ये नीति मौजूदा कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडरों के वितरण को सुनिश्चित करेगी। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर में रोजाना होने वाली औसत बिक्री का लगभग 20% यानी करीब 1,800 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्रतिदिन नियंत्रित वितरण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता सूची में शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, रेलवे और हवाई अड्डे सबसे ऊपर रखे गए हैं। दिल्ली सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि यदि दिल्ली में एलपीजी की जमाखोरी होती है तो सरकार इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस कठिन समय में सभी संयम बरतें और आवश्यकता होने पर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें। दिल्ली पुलिस नशा मुक्त राजधानी के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों से मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। नशा मुक्त दिल्ली अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त अधिकारियों और विशेष टीमों के गठन के साथ इसे और अधिक मजबूत किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस पहल के तहत जानकारी के आधार पर शहर में सक्रिय तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ मादक औषधि और मनारोगी पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट के तहत निवारक कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि फरवरी और मार्च के दौरान की गई कार्रवाई में कई मादक पदार्थ तस्करों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि पिछले महीने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की गई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नशीली दवाई की अवैध आपूर्ति करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अल्प्राजोन की 59,925 गोलियां बरामद की है। इसके अलावा 2,000 इंजेक्शन भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच नशीली दवाओं की अवैध आपूर्ति कर रहा था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को स्थायी लाइसेंस देने के फैसले का स्वागत किया है। एक वीडियो संदेश में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस सुधार से व्यापार करने में आसानी होगी और देशभर में लगभग 2.5 करोड़ खाद्य व्यापार संचालकों को लाभ मिलेगा, जिनमें छोटे व्यापारी, रेस्तरां मालिक और स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ बुनियादी पंजीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होगी।
जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो फूड का काम करते हैं और वो यदि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर है या टाउन वेंडिंग कमेटी में रजिस्टर है, तो अब उनको फूड सेफ्टी अथॉरिटी का लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा रिफॉर्म, भारत सरकार ने इतिहास में पहली बार परपेचुअल लाइसेंस की प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार के अन्य विभाग भी अब परपेचुअल लाइसेंस की ओर ध्यान देंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा बदलाव आएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ओडिशा पर्व 2026 में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा पर्व सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि लोगों को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले उड़िया समुदाय को अपना विस्तारित परिवार बताते हुए कहा कि राजधानी में लगभग 15 लाख उड़िया परिवार रहते हैं और उनकी सुरक्षा तथा जरूरतों का दिल्ली सरकार पूरा ध्यान रख रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज कनॉट प्लेस में आयोजित फिट इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि ये कार्यक्रम एक जन आंदोलन है जो लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ शहर को पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने की संस्कृति को बढ़ावा देने से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जा सकेगी। श्री सूद ने दिल्ली वासियों से अपील की कि वे साइकिल का उपयोग करें जिससे प्रदूषण कम करने और पर्यावरण सुधार में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भविष्य में साइकिलिंग के अनुकूल लेन और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने पर भी विचार कर रही है।
फिटनेस के माध्यम से हम बाकी युवाओं का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना, पर्यावरण के खिलाफ लड़ाई, इन सब विषयों को लेकर ये प्रयास है और दिल्ली सरकार मिलकर केंद्रीय खेल मंत्रालय और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ इसको मास मूवमेंट बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगी।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज कृष्णा विहार कॉलोनी में डॉक्टर संतराम भारद्वाज मार्ग पर सड़कों और नालियों के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ साथ नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राजपुरा गुरुमंडी स्थित उपासना कुंज में मदन दास देवी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने चौपाल द्वारा आयोजित 159वें सूक्ष्म ऋण वितरण समारोह को संबोधित किया। श्री गुप्ता ने कहा कि चौपाल जैसी पहले महिलाओं की सशक्तिकरण, परिवारों के आर्थिक विकास और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज हेल्थ एंड वेलनेस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य चौपाल पहल की भी शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता, निवारक देखभाल और वेलनेस गतिविधियों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। सरकार ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं आमंत्रित की हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी नागरिकों से नामांकन या अनुशंसाएं करने का अनुरोध किया है जिसमें स्वनामांकन भी शामिल है। और राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली में सुपर मेडिकल हब विकसित किया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों का एकीकृत संस्थान बनाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने वर्ष 2025 में यात्रियों की संख्या के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार वर्ष 2025 में दिल्ली मेट्रो में कुल 235.80 करोड़ यात्रियों ने सफर किया। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बुढ़पुर स्थित अपना घर आश्रम के 12वें वार्षिक उत्सव में शामिल हुई और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज कनॉट प्लेस में आयोजित फिट इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।